सुखदेव गोस्वामी जी उनको सारा भागवत सुना करके अब वहाँ से चले गए हैं। और ये उसकी चिंता कर रहे थे, इतने में मैया ने प्रश्न पूछा, मैं नहीं समझ सकती स्त्री स्वभाव सुलभ इसे, इसलिए तुम जो कुछ की उन्होंने बतलाया है हमको सरल सहज रूप में स्त्रियों के लिए भी बोधगम्य भाषा में हमको बतलाओ, क्या तुमने समझा। उसी समय में ये मैया को बतला रहे हैं उपाख्यान। उन्होंने बतलाया उतने समय के अंदर में, तो यहाँ पर उत्तरा और परीक्षित महाराज जी का संवाद, उधर में जैमिनी जी कथा, जन्मेजय माने परीक्षित महाराज जी के पुत्र जन्मेजय जी को ये कथा सुना रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी ने आरंभ किया था, परीक्षित जी ने आरंभ किया, अथवा ये ऋषि ने आरंभ किया। प्रयाग में एक बार संतों की बड़ी भीड़ लगी, शायद होगा माघ का महीना, और उसी समय में माघ का स्नान का समय, बड़े बड़े भक्त लोग सब उसमें, ऋषि महर्षि सब लोग जुटे हुए। उसी में नारद जी भी उस वहाँ पर आए थे, ऋषियों की सभा बैठ रही थी, उसमें भगवान की तरह तरह की कथाएं हो रही थी। नारद जी की उत्कंठा किसी तरह से हुई, त्रिजगत में कृष्ण का सबसे प्यारा भक्त कौन है, सबसे अधिक प्रिय कौन है, वैसे ही से आरंभ। नारद जी के ऊपर में ये छोड़ा गया जो वो पता लगा करके आए हैं कि कौन भक्त उनका, कौन सबसे अधिक प्रिय कृष्ण का है। नारद जी वहाँ से उठ करके जहाँ जब निकले तो देखा जब प्रयाग में उस मेले में एक कोई राजा आए हैं। राजा ने क्या किया, अपने आदमियों को देकर के वहाँ पर जगह साफ करा करके अपना तंबू इत्यादि लगाया और उसमें शालग्राम भगवान को विराजमान कराया वेदी के ऊपर, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, कीर्तन होने लग गया और वहाँ पर बड़े ठाठ से शालग्राम की सेवा उन्होंने की, अर्चन पूजन और विधिवत अर्चन इत्यादि किया, पूजन किया, उनको भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद में जितने ऋषि महर्षि भक्त लोग थे उनको प्रसाद दिया। इसके बाद में वहाँ पर सर्वसाधारण जो लोग वहाँ पर आ सके उनको दिया, यहाँ तक कि स्त्री शूद्र पक्षु पक्षी सबको महाप्रसाद देकर के सबको तृप्त किया। तृप्त करने के बाद में शालग्राम जी को अपने संपुट में लेकर के जा रहे, इतने में नारद ऋषि आए। नारद जी ने उनको देकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ में बताया, ओ आज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति का हमने दर्शन किया, आप ही धन्य है जगत, कृष्ण के सबसे आप ही। उन्होंने जे मैं मुझे सब भक्ति है नहीं, तो आप ये ठाकुर जी की ऐसी सेवा कर रहे हैं और इतना धन खर्च करके और सब लोगों को महाप्रसाद दे दान इत्यादि करा रहे हैं, ऋषि महर्षियों को सेवा कर रहे हैं, इसे बढ़कर के और भक्ति क्या होगा। उन्होंने कहा जब मैं भक्त नहीं, भक्ति का तो लेश भी नहीं मेरे अंदर, अरे यदि जाओ पुरुषोत्तम में वहाँ पर देखो जे वहाँ के राजा कैसे उसके सेवक बन करके और उनकी सेवा करो। उनके राज्य में कोई भी जाता है महाप्रसाद सबके लिए सरल सहज रूप में, कोई भी जाए उनको महाप्रसाद, अभी भी जो जाता है वो मिल जाता है सबको, कोई नियम नहीं है, जैसे इसी को मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। और जगन्नाथ जी की एक वर्ष तक विचित्र प्रकार से वो सेवा होती रहती है। इनकी बात सुन करके वहाँ गए, वहाँ जा करके सचमुच में देखा सब समय मंदिर में उत्सव होता रहता है, लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव और सुदर्शन लिखा है। वहां जाकर के उनकी परिपाटी देखा, सेवा की, बड़े प्रसन्न हुए और राजा से मिले धीरे धीरे। किंतु मंत्र जब नहीं मिले और राजा की बड़ी प्रशंसा की, सचमुच में आप भगवान के बड़े प्रिय हैं, आप ही धन्य हैं। उन्होंने जी क्यों, ये इतना जो साम्राज्य आपका है, आपका नहीं बल्कि जगन्नाथ जी का है, आप उसके सेवक बने हुए हैं। अभिमान नहीं है जब मैं राजा हूं। हम लोग तो थोड़ा सा सेवा का अधिकार पा करके न जाने हम लोगों को क्या हो जाता है, और इतना राज्य पा करके भी ठाकुर जी के वो सेवक बने हुए हैं बड़े दीनहीन होकर। राजा ने कहा मैं सेवक नहीं, मैं तो इनका भजन ही नहीं कर पाता हूं, दिन रात इसी काम में सब लगा रहता हूं, खुद भजन नहीं करता, इसलिए मैं इनका सेवक नहीं। हमसे कितनी त्रुटियां हो जाती हैं, विशेष करके त्रुटि क्या हो जाती है, जबकि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है उस समय में घोड़े के पैरों से और लोगों के आदमियों से सब जितना वहाँ का बाटका और इत्यादि है सब रौंद जाता है, और मैं यदि दर्शन करने जाता हूँ तो सब लोगों को दर्शन से वंचित कर दिया जाता है, महाराज आप पधार रहे हैं, जो सुराग उस समय कोई नहीं जा सकता, इस समय सेवा नहीं कर पाता, मैं बहुत दुखी हूँ। यदि आपको सेवक देखना है तो जाइए, यहाँ तो हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, आप चले जाइए स्वर्ग में, और वहाँ पर भगवान उपेंद्र की इंद्र जी सेवा करते हैं छोटे भैया बन करके, उनसे बढ़कर के और कोई सेवक नहीं। इतना कहते हैं नारद जी वहाँ चले गए और इंद्र को दे करके बिना बजाते हैं उनका स्तुति करने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे, आप ही का जीवन धन्य है, आप साक्षात रूप में उनकी सेवा करते हैं, विष्णु भी आपके छोटे भैया बने हुए हैं और उनकी तरह तरह से सेवा करते हैं आप, यहां तक कि वो भगवान आपकी रक्षा के लिए कभी कभी महाराज कौन बलि महाराज जी को भी वंचना करते हैं और आपकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं, विशेष करके जब इन पर कोई विपत्ति पड़ती है तो उपेंद्र भगवान उनकी रक्षा करते हैं, इतने सेवा से प्रसन्न है। उन्होंने कहा जी कहाँ मैं उनका भक्त हूँ, मैं तो जानता ही नहीं जी वो कहाँ रहते हैं, विशेष करके रात में वो कहाँ रहते हैं, ये दूसरे लोक में चले जाते हैं, कभी कभी हमको दर्शन देते हैं और रक्षा कहाँ करते हैं, रक्षा मैं तो बल्कि कृष्ण लीला में मतवाला होकर के और कृष्ण का निनाम प्रकार से बाधा देता हूँ उनकी सेवा में, मैं समझ ही नहीं पाता। उन्होंने हमसे दो एक बात मांगा, वो क्या पुष्प और सुधर्म सभा, हमने दिए नहीं, इसलिए यदि कोई सेवक है तो ब्रह्मा जी सबसे अधिक सेवक हैं, वो भगवान की तरह तरह से सेवा करते हैं, उनका वैभव भी देखने लायक है, बल्कि ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक हैं, ये तीनों ही एक हैं, कभी ब्रह्मा बनते हैं और कभी शंकर बनते हैं और कभी विष्णु के रूप में रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी आराध्य भी हैं और आराधक भी बने हुए हैं, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाता। पहला जो खंड था उसका नाम था भौम खंड, भौम खंड माने वो वहां तक पुरुषोत्तम क्षेत्र तक भूमंडल में, और दूसरा खंड है दिव्य, कहाँ तक, ब्रह्मा तक, ब्रह्मा और इंद्र का ये दिव्य खंड है, तत्व भौम खंड नहीं है, जड़ एकदम जड़ नहीं है। अब वहां पर गए, सहस्त्र शिष्या भगवान को देखा और उनके सेवक ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी से नारद जी मिले और उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। भक्तों के तारतम्य से भगवत आविर्भाव का तारतम्य दिखला रहे हैं, जैसे भक्त होंगे उनके उपास्य भी वैसे ही होंगे। ब्रह्मा जी को बहुत स्तुति स्तव किया और बोला जी आप ही जगत में धन्य हैं। क्यों? अरे आप केवल सेवक ही नहीं है, ब्रह्मा ही नहीं है, आप तो विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महर्षि तीन एक ही तत्व हैं, आप ही परब्रह्म भी हैं। मैं जो कुछ कहना था वो सब कुछ उनको बतलाया और अब उसी रूप में आप सहर्ष शीशा सबसे जिसकी बड़ी विभूति है उसकी आप सेवा करते हैं, साथ साथ में आप सबके क्या पितामह हैं, सब देवताओं के भी आप आराध्य हैं, सबको आशीर्वाद देने वाले हैं, इसलिए आपके समान और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा जी अरे तुमको कितनी बार हमने बतलाया जी हम ब्रह्मा विष्णु महेश में से हम विष्णु नहीं हैं, हम उनके सेवक हैं, इसलिए मैं वो विष्णु नहीं हूँ, सृष्टि करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो एक यंत्र हूँ, हमारे माध्यम से प्रभु जो कुछ कराते हैं मैं उनका सेवक हूँ, मैं विष्णु नहीं। लोग ऐसी धारणा करते हैं, बल्कि मैं मत से मत वाला हो करके कृष्ण के गोचारण में हमने बाधा दी, उनके बछड़े और सखाओं को हमने हरण कर लिए, यही नहीं रावण को हमने बर दिया, हिरण्यकश्यपु को बर दिया था, रावण से हो सकता है कोई संबंध हो, और भी मेरे गर्भ से गर्भित होकर के मैंने कितने लोगों को आशीर्वाद दिया है जो भगवान की सेवा में बाधा डालने वाले हैं, विशेष करके सृष्टि कार्य में व्यस्त रहने के कारण हमको समय नहीं मिलता है जो प्रभु की कोई सेवा कर सके, ये दिखलाने के लिए केवल है। इसलिए मैं दुर्भागा हूँ, यदि भक्त देखना है तो आप शिवलोक में वहाँ पर जाइए, सबसे बड़े कौन हैं, शंकर जी हैं, उनके भक्त हैं और बड़े प्रिय हैं, वहाँ से शंकर जी ये नारद्री ऋषि शिवलोक में गए। शिवलोक कहाँ है? अब यहाँ यहाँ तक तो हुआ दिव्य लोक ब्रह्मा तक, अब ब्रह्मालोक के बाद में, ब्रह्मलोक के बाद में क्या आया? बिरजा को पार कर गए,
आवरण अष्टावरण, इसके बाद में बिरजा।
हाँ, अष्टावरण को ही पार करके बिरजा लोक को चले गए। ये प्रपंच से अतीत है, दिव्य भी प्रपंच के अंतर्गत है, इसका भी समय समय पर विनाश हो जाता है ब्रह्मलोक तप का, किंतु बिरजा के पार में नहीं होता, बिरजा तक के बाद में नहीं, इसके बाद में प्रपंच को दूर करके चले गए शिवलोक में, जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में दो भाग, एक नीचे एक ऊपर, जहाँ पर साई जी मुक्ति का स्थान है वो ब्रह्म का लोक का निचला भाग है, और ऊपर लोक को सदाशिव लोक कहते हैं।
सदाशिव और रुद्रशिव दोनों एक ही
है? दोनों एक ही था।
आपने बार बताया था कि शिव लोक के नीचे हिस्सा कैलाश है, ऊपर हिस्सा सदाशिव लोक।
अब मान लो बस रुद्र को कैलाश में रख लो,
भौम में ही रुद्र का आ गया, वहाँ सदाशिव विष्णु का
फिर वहां पर देखा जे शंकरसन भगवान, शंकरसन राम, शंकरसन राम माने कौन? बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु जी की सेवा कर रहे हैं और अपने सब परिकरों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं राम राम इत्यादि का, राम माने वहां पर शंकरसन राम, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी वहां पर पहुंचे और उनकी स्तव स्तुति करने लग गए, बोले जी आप भी, आपके समान और कोई धन्य नहीं है, आप भगवान के बहुत प्रिय हैं, प्रिय क्या, आप ही स्वयं भगवान भी हैं, हरि और हर में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों हरि हर एक आत्म है, इसलिए आप उपास्य तत्व भी हैं, उपासक भी हैं, इसके अतिरिक्त आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी ने ये सब बतलाया हमको। ब्रह्मा जी में और शंकर जी में क्या वैशिष्ट है? ब्रह्मा जी अधिकांश जीव तत्व होते हैं, किंतु शिव को कदाचित कभी कभी जीव तत्व होता है, बाकी वह तत्व विष्णु का ही विकार सदाशिव को ही समझना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी कितना 100 वर्ष अपनी आयु से जब तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनको शिवत्व प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के लिए बतलाया गया, जैसे वो ब्रह्म संहिता में क्या बतलाया गया, तत्व के लिए शिव जी के लिए क्या, दूध जैसे दही में विकृत हो जाता है, फिर दधि दूध नहीं होगा, किंतु दूध के कुछ गुण उसमें उपलब्ध रहते हैं, दूध ही है, दूध ही का विकार है। अच्छा, दही में घी होगा कि नहीं, घी रहता है, इसलिए उसके गुण है, किंतु दूध विकृत होकर के है, दूध ही का विकार है, वो दही दूध से कोई भिन्न चीज नहीं है, किंतु ब्रह्मा को ऐसा नहीं, ब्रह्मा ऐसा नहीं कहे जाए, इसलिए शंकर जी को श्रेष्ठ बतलाया। बल्कि ये भी ब्रह्मा जी ने बतलाया था जो भगवान के इतने प्रिय हैं कि यदि उनका नाम का गंध के साथ में किसी भक्त का नाम रहे तो उसके समस्त दोषों को भी क्षमा कर देते हैं। जैसे बाणासुर, बाणासुर भगवान कृष्ण से लड़ने आया और शंकर जी की कृपा से उन्होंने उसके सब हाथ नहीं छेद करके, केवल चार रख करके और बाकी सब छेदन किया, उसको मारा नहीं और उसको शंकर जी का पार्षद बना दिया। इसलिए शंकर जी के प्रिय भी भगवान के प्रिय होते हैं, सदाशिव लोक में सब समय रहते हैं और नृसिंह उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने सुन करके बतलाया, मैं भगवान का प्रिय नहीं बल्कि हमारे बल से और हमारे वरदान से रावण, कुंभकर्ण इत्यादि राक्षस लोग, बाणासुर इत्यादि, भस्मासुर, ये सब भगवान का विरोध किया, अधिकांश कंस इत्यादि सब हमारे पूजक हैं, हमारे बल पर ये सब शक्ति पा करके और भगवान का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे जो कठिन सेवा है वो सेवा का हमको करने के लिए आदेश देते हैं, लोगों को हमसे विमुख कर दो। कहाँ हमारा ये भाव होना चाहिए जो सब लोगों को भगवान के उन्मुख करेंगे, भक्ति देंगे, भक्ति का प्रचार करें, और हम उल्टा क्या करते हैं, भगवान के विपरीत महामाया में उनको लेकर के फेंक देते हैं। तुम भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, इस तरह का उपदेश देता हूँ, मायावाद कल्पित कल्पना करके स्थापित करके जीवों को विमुख करता हूँ, इसलिए मैं भगवान का प्रिय नहीं हूँ। यदि प्रिय देखना चाहते हो तो सूतल लोक में चले जाओ, वहाँ पर प्रहलाद महाराज जी रहते हैं, वो हमसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर एक प्रश्न होता है, अच्छा सचमुच में प्रहलाद महाराज जी में और शंकर जी में कौन श्रेष्ठ है? शंकर जी। किंतु यहाँ पर किस लिए बतलाया गया, उन्होंने किस लिए बतलाया, और नारद जी भी वहाँ पर गए किस लिए? कुछ विषयों में श्रेष्ठ है, किंतु सेवा की जो भावना है प्रहलाद महाराज जी में, वो एक तरह से उनके समवर्ती हैं, माने हरि और हर आत्मा एक आत्मा है ना, तो वहाँ पर सेवा क्या होगी, एक तरह से सख्य भाव जैसा भाव। किंतु प्रहलाद महाराज जी सूतल लोकों में रह करके नृसिंह भगवान की सेवा करते हैं,
पहुंचा दिए और वहां पर पहुंच करके फिर प्रहलाद महाराज के पास क्यों आ गए,
वहां से भी छोड़ करके फिर वृंदावन में कभी आएंगे।
नारद जी जा रहे हैं, भक्तों का वैशिष्ट्य देखते हैं, सदाशिव लोक से फिर ऊपर लोक में जाना चाहिए था
उनको। नहीं,
सदाशिव लोक तो प्रपंच के होती है, शीतल तो प्रपंच के अंदर है,
प्रपंच के अंतर्गत होते हुए प्रपंच में नहीं है। जहाँ पर नृसिंह भगवान का जो धाम है वहाँ पर रहते हैं ईश्वरी, इसलिए वहाँ पर रहने पर जैसे सनक सनंदन सनातन है, यहाँ पर इस लोक में उतरे हुए हैं भीम अर्जुन नकुल सहदेव पांडव लोग हैं या और भगवान के भक्त लोग हैं, उनका कितना उत्कर्ष है, उन लोगों से भी अधिक है। इसलिए भक्तों का उत्कर्ष दिखला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी भगवान के लिए कितना कष्ट सहा, विचलित नहीं हुए, एक बार भी प्रार्थना नहीं की आप हमारी रक्षा करें। जानते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करने वाले हैं, हम लोगों का प्रहलाद महाराज जी का चरित्र ग्रहण करना चाहिए। सब में भगवान को दर्शन करते हैं और भगवान में सबको दर्शन करने वाले परम महाभागवत हैं। ये लोग जहां रहते हैं वही स्थान श्रेष्ठ है, इसलिए नृसिंह भगवान जी वहां पर रहते हैं, प्रहलाद महाराज वहीं पर उनकी सेवा करते हैं। उसी समय में वरदान दिया था ये तुम सुतल लोक में जाओ, वहीं पर मैं रहूंगा, तुम भी हमारी वहीं पर सेवा करना। नारद जी ने उनके खूब प्रशंसा की और बतलाया जी आप ही सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। प्रहलाद महाराज जी ने कहा मैं उनकी कुछ भी सेवा नहीं करता, हमको तो केवल एकमात्र दर्शन दिया और उनकी मैं कोई भी सेवा नहीं कर सका। और भी दीनता हीनता से कुछ बातें की और उन्होंने बतलाया ये किम पुरुष वर्ष में रघुनाथ जी के सेवक हनुमान जी हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, आप वहां पर जाइए। वे वहां से किम पुरुष वर्ष में पहुंचे, जिसको आजकल तिब्बत कहते हैं शायद, तिब्बत, तिब्बत का पठार। हनुमान जी से वो मिले, हनुमान जी राम के विरह में अत्यंत दुखी हैं, नारद जी उनको प्रणाम किए और उनकी प्रशंसा करने लगे आप जैसा और कोई धन्य नहीं है, आप भगवान के प्रिय हैं, सब प्रकार से आप सेवा करते हैं, उनके साथ सब समय रहते हैं। हनुमान जी ऐसी कोई सेवा नहीं है जो नहीं करते हैं, कंधों पर बैठा करके ले जाते हैं, पीठ को सिंहासन जैसा बनाते हैं,
पूछ को चामर,
पूछ से चामर, साथ में पूछ से परकोटा बना देते हैं, जितना इच्छा चाहे ना समस्त बानर सेना कितनी थी करोड़ों, और उसके बीच में राम और लक्ष्मण सोए हुए हैं और अपने पूछ का परकोटा बना करके गेट पर संग बैठे हुए हैं, कोई विभेद नहीं सकता, किंतु महिरावण उसमें से निकाल कर लेकर के चला गया। जब जब रघुनाथ जी की सेवा की कोई भी आवश्यकता होती है तब तक ये सेवा करते हैं। सब सेवकों को हटा दिया राज सिंहासन पाने के बाद में, किंतु इनको नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया, सेवा में जीवन तो है ही है, एक और बात है राम के अतिरिक्त तो उनका कुछ है नहीं, राम को छोड़ करके उनका कोई घर नहीं, कोई धन नहीं, कोई बेटा बेटी स्त्री पुत्र परिवार नहीं, अंगद सुग्रीव इत्यादि को ये सब चीजें थी, धन था, पुत्र था, स्त्री थी, परिवार थे राम के अतिरिक्त भी, इसलिए सबको लौटा दिया। बल्कि अंगद जी नहीं लौटना चाहते थे, वो हनुमान जी के पीछे बैठ गए, जिस समय कि वो विदा कर रहे थे, कपड़े लत्ते मिठाई रुपया पैसा सब मणिमाला दे करके पीछे बैठ गए, नहीं जाना चाहते थे। तो अभी सबको विदा कर दिया, अंत में अंगद को बुलाया, किंतु हनुमान जी को नहीं बुलाया जाने के, अंत तक रहे। यहाँ तक कि जब प्रभु का साकेत धाम के लिए गमन कर रहे थे, सबको लेकर के गए, तो इनको कहा जाए तुम यहीं पर रहना, किस लिए? भक्ति के प्रचार के लिए तुम रहना। तो वो हनुमान जी वहाँ पर हैं। तो हनुमान जी सब प्रकार से सेवा करने वाले हैं। जब हनुमान जी से कहा, आप बड़े प्रसन्न होकर के स्तव स्तुति करने, तो उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर में राम की कोई कृपा नहीं, मैं तो उनका सबसे दुर्भागा सेवक हूँ। जब गए तो हमको साथ में नहीं ले गए और कह करके रोने लगे, मैं उनकी सेवा नहीं कर सका इत्यादि सब कहने लगे। बल्कि जहाँ पर सीता जी रहती हैं रात में, वहाँ पर हमारा प्रवेश नहीं, और भी सेवाओं में हमारा प्रवेश नहीं, यदि सेवक देखना है तो आप चले जाइए हस्तिनापुर में पांडवों से मिलिए। तो वो वहाँ से पांडवों के पास में वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर पांडवों से वहाँ पर उनकी भेंट हुई। उन्होंने पांडवों को, पांडव लोग पहले इनको आदर सत्कार करते थे और इनका पूजन करते थे, वो लोगों ने सुना जे आए हैं नारद ऋषि, तो सब लोग मिलकर के हार इत्यादि फूल चंदन और पूजा करने की सामग्री लेकर के वहाँ पर उपस्थित हुए। नारद जी जब वहाँ पर पहुँचे तो नारद जी को वो लोग पूजा करने थे, तो उन्हीं सामग्रियों से युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव कुंती मैया और द्रौपदी इत्यादि की उन्होंने पूजा की और उनकी प्रशंसा करने लग गए, ये आपके समान और कोई भक्त नहीं है, आप लोगों के साथ में दैनंदिन व्यवहार विवाह शादी आप लोगों के साथ में, यहाँ तक कि अर्जुन के घोड़े धोते हैं, उनका रथ हाथ चलाते हैं, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र न, उसको बाण शिक्षा इत्यादि कौन देने वाले हैं? अरे कृष्ण ही उनको सब शिक्षा देने वाले हैं। जब उनको प्राण का संकट होता है तब रक्षा करते हैं कृष्ण उन्हीं की चिंता है, इन लोगों को अपने प्राणों की और किसी चीज़ की चिंता नहीं है, भगवान को इनके लिए चिंता है। अर्जुन के सख्य भाव से रहने वाले, युधिष्ठिर के सख्य वात्सल्य और दास्यती, अर्जुन का दास्य और सख्य, सख्य प्रधान दास्य, भीम का सख्य प्रधान दास्य, इसी तरह से नकुल और सहदेव का दास्य प्रधान सख्य, इस तरह से द्रौपदी जी का सख्य प्रधान दास्य भाव, कुंती जी का सख्य भाव संपन्न दास्य वात्सल्य भाव, इनके वश में वशीभूत रहते हैं, और ऐसी कोई सेवा नहीं जो कृष्ण इनकी नहीं करते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं, जो ऋषि महाराज जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम ग्रहण भी करते हैं, अर्जुन के साथ में एक पलंग पर सोने वाले हैं, ऐसी सब इसलिए इनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा प्रभो आप हमारी इस प्रकार से क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? आप यदि भक्तों को देखना चाहते हैं सबसे प्रिय, द्वारकापुरी में जाइए और वहाँ पर जादव लोग हैं, जादवों से बढ़कर के उनका कोई प्रिय नहीं है। हमारे यहाँ तो कृष्ण आते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर चले जाते हैं, रहते हैं द्वारकापुरी में, उनके जितने जादव लोग हैं वो उनके बड़े सेवक हैं, कोई उनके भैया हैं, कोई उनके बेटे हैं, कोई उनके छोटे भैया हैं, कोई उनकी बहन है, कोई माँ है, पिता है, भाई है, इस तरह से सब परिवार वर्ग के साथ में वहाँ पर रहते हैं, वो लोग सेवा करते हैं। वहाँ पर पहुँचे उनकी सभा में, वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर कृष्ण उस सभा में नहीं थे, कौन थे? उग्रसेन राजा थे, अक्रूर थे, उद्धव जी थे और सब जितने जादव लोग थे, यहाँ जा करके उनकी प्रशंसा जादवों की करने लगे। ये आप लोग कृष्ण के अत्यंत प्रिय पात्र हैं और आप ही का जीवन धन्य है, आपसे बढ़कर के और कोई प्रिय नहीं है। और उनकी प्रशंसा करने लगे, सब समय उनकी आप लोग सेवा करते हैं। और उद्धव जी कहाँ हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। वो तो एक क्षण भी इधर उधर उनको छोड़ करके नहीं जाते हैं। कृष्ण के वो मित्र हैं, कृष्ण के वो सखा हैं, कृष्ण के वो मंत्री हैं, कृष्ण के सलाहकार हैं, कृष्ण के वो सर्वस्व हैं। इसलिए उद्धव कहाँ हैं, और उद्धव पास में खड़े थे और आंखों से आंसुओं से उनका भर गया, बड़ी प्रशंसा करने लगे। उद्धव जी कितने में सामने आए और फिर उनसे वार्तालाप होने, उनको गले से पकड़ लिया और उनकी प्रशंसा करने लगे, आहो आप ही सबसे धन्य हैं। उद्धव जी ने सुन करके कहा, मैं धन्य हूँ? अरे आप सब कुछ जानते हो, यहाँ पर विस्मरण हो रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं? अरे आप जानते हैं कि मैं ब्रज में, कृष्ण ने हमको भेजा, वहाँ पर जब मैं देखा हमको यह अभिमान था कि मैं सबसे अधिक भगवान का प्रिय हूँ और सेवक हूँ, मुझसे अधिक कोई प्रिय नहीं है। किंतु जब ब्रज में गया तो हमारा अभिमान, कृष्ण ने हमको भेज करके गोपियों का अनुग्रह प्राप्त कराया। सचमुच मैं गोपियों का उस समय में देखा, गोप लोगों का, जो इनसे बढ़ करके भगवान का प्रिय नहीं, इसलिए तो मैंने कहा था आशाम हो चरण रेण जुषाम हम श्याम इत्यादि बतलाए, अथवा बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम कहा। सबसे अधिक वही भगवान के प्रिय हैं, इसको भी हमने देखाया क्या, ओ नायं श्रियो उ नितांत रथे प्रसाद सर्जोषितान ननिन गंध रुचो कुतान्यम रासोत्सवे भुज दंड गृहित कंठ लब्धाशीषम जद उद्गात ब्रजवल्लवीना इत्यादि हमने ये कहा था। इसलिए गोपियों से बढ़कर के और कोई नहीं है। इस तरह से ब्रज के परिकरों की और सबकी उन्होंने महत्ता बतलाई और अंत में गोपियों की बतलाई। ब्रह्मा जी अंत में उद्धव जी से बहुत बातें हुई नारद जी की, होते होते वो कृष्ण की के गोपियों की महत्ता इत्यादि के संबंध में उन्होंने बतलाया। इसके बाद में गोपियों का, उनके महर्षियों का समाज बैठा था, रोहिणी मैया भी बैठी थी, उद्धव भी बैठे थे, और वहीं पर उद्धव जी कह रहे थे बिना गोपियों, बिना कृष्ण के वहां पर जाए उनका विरह कभी नहीं कम हो सकता है, उनका दुख दूर नहीं हो सकता, बस कृष्ण ही से उनका एकमात्र, उसी की लालसा में आशा में वो जीवित रहेंगे, कृष्ण कब आएंगे उनका दर्शन होगा, इसलिए वो किसी तरह से जी नहीं सकते। हमको भेजा, फिर बलदेव जी को भेजा, किंतु इसे उनको सांत्वना नहीं होगी, हम तो यही समझे हैं। बलदेव जी उनसे कहने लगे, हमने भी इनको कितनी बार कहा, ये सुनते नहीं, मैं भी गया और उनकी अवस्था हमने देखी और फिर वहां से लौट आया, इनको कहा जी चलो हम दोनों चले, तभी नहीं जाए, अब जितने गैया बछड़े हैं सभी मर जाएंगे और जितने ब्रजवासी हैं वो धीरे धीरे मर जाएंगे, यहाँ तक कि गिरिराज गोवर्धन जी उनके विरह में चूर चूर होकर के और धीरे धीरे नीचे दब चले जाए, यमुना जी का पानी सूख गया, इसलिए गोप गोपी लोग कहीं मर नहीं रहे, वो उतना ऊंचा नहीं है जैसे वहां से कूद करके मरे, अथवा यमुना के पानी में डूब करके मर जाए, इतना भी पानी नहीं है यमुना में, क्यों, विरह में सब। ये सुनते ही कृष्ण बड़े दुखी हुए और सचमुच में ऐसा निष्ठुर हो, ये कह करके रोते रोते वो भी गिर पड़े, मूर्छित हो गए। बलदेव जी को भी उन्होंने गले से पकड़ा, वो भी गिर गए, वो भी और दोनों मूर्छित हो गए। उस समय में बहुत चेष्टा की गई उठाने के लिए, नहीं उठे। अंत में ब्रह्मा जी आए, अब इसलिए किस लिए ये दिखला रहे हैं, गोपियों का महत्ता दिखलाने के। तो वहीं पर ब्रह्मा जी आए, नौ वृंदावन उन्होंने सृष्टि की, नौ वृंदावन माने क्या, एकदम वृंदावन जैसा सब उपवन इत्यादि, रविवतक पर्वत पर वहाँ गोवर्धन भी आ जाएंगे, इसलिए गोवर्धन की वहाँ पर देखे जाए, आखिर समुद्र भी वहाँ पर पास ही है शायद, तो वहां पर माने गोवर्धन पर्वत की भी भावना आ जाएगी, समुद्र यमुना की भी भावना आ जाएगी, सब प्रकार से ही रहेगा, वन जंगल जैसा दृश्य भी है। तो वहीं पर गरुड़ को आवाहन किया, गरुड़ भी आए और कृष्ण और बलदेव को वहां पर चढ़ा लिया और चढ़ा करके वहां पर ले गए अरेवत्ता पर्वत के पास ही में, सानुदेश में, समुद्र के किनारे सुंदर वृंदावन जैसा वहां पर वन बन गया और वहां पर सखाओं जैसी मूर्तियां बना दी, गायों जैसे मूर्तियां बना दी और गोपियों की मूर्ति बना दी, नंद वसुदेव जी की मूर्ति बना दी और कृष्ण बलदेव जी को एकदम किशोर अवस्था में जैसे बंसी इत्यादि दिए हुए हैं, ऐसे गोचारण के समय में जैसा वेश होता है, परम किशोर सुंदर रूप उनको बना दिया। दोनों मूर्छित पड़े हैं और इस प्रकार से बना करके धीरे 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 वहाँ पर पहुँची सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी, पद्मा जी पहुँची, सत्यभामा और सब रानियाँ पहुँची, उद्धव पहुँचे, विशेष विशेष लोगों को वहाँ ले गए और उनको एक झाड़ी में छिपा दिया। नारद ऋषि भी ऊपर चढ़ करके ये दृश्य देखने लगते और धीरे धीरे ये बलदेव प्रभु जी को धीरे धीरे उन्होंने उठाया, उनको कुछ होश हुआ। इसके बाद उनको कुछ कान में कह करके ब्रह्मा जी चले गए, ये तुम ब्रज के भाव से जैसे सवेरे उनको उठाते थे वैसे उठाना, बस वो आकर के गोचारण करने के लिए कृष्ण को पुकारने लगे। कृष्ण कन्हैया कन्हैया कहते हुए, गायें तुम्हारे लिए खड़ी हैं, मैया इतनी बेला हो गई तुम उठे नहीं, सखा लोग तुमको छोड़ करके जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से चलो, मैया तुम्हारे विरह में एकदम मत हैं, आज दधिमंथन भी छोड़ दिया, हाथ में मक्खन लेकर के देखो जो खड़ी हैं। कृष्ण हाथ आँख मलते 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 उठे, सचमुच में आज देर हो गई है, मैया खड़ी है वहाँ पर बैठ रही करके हाथ में मक्खन लेकर के खिलाने के लिए, और रोहिणी जी ठीक वहाँ पर गई हैं। असल में रोहिणी जी वहाँ पर एक मूर्ति थी और बलदेव जी जो वो असल थे। इसके बाद में रोहिणी जी ने इनका हाथ मुख धुलाया, मैया तुम्हारी कुछ उस रूप में है, तुम्हारा देख करके नहीं देख देरी होने से कुछ विवश हो गई हैं, बस इनको खाना पीना और तुम चलो और तुम्हारे लिए हम सखाओं के साथ या किसी के साथ में भोजन वहीं पर भिजवा देंगे। कृष्ण वहाँ से निकले, यशोदा मैया के पास में जाकर के बच्चे जैसे बनते हुए ऐसे माने भंगी के साथ में प्रसाद लिया, वो उनके हाथ से मक्खन, सब लोग देख करके जो दूध देख रहे थे चकित हो गए। इसके बाद में गोचारण के लिए आगे बढ़े, वहाँ पर तो सब बलदेव जी आगे निकल गए हैं, गायें भी आगे निकल चलते, देखा जो गोपियाँ दोनों तरफ में खड़ी हैं, एक मूर्ति राधा जी की भी बनाई गई थी, मूर्ति को देखते ही कृष्ण बड़ी भंगी से उनके निकट आए और उनके तरफ में देखा, मुस्कुराए और बोले जे तुम आज बोलती क्यों नहीं, क्या तुम हमने जो स्वप्न देखा था वही स्वप्न तुमको मालूम हो गया क्या है? हो सकता है तुमको मालूम हो गया, ऐसा कहकर उन्हें देखा जे तो भी नहीं बोल रही, तो उन्होंने कहा जे तुमने मैंने ये स्वप्न देखा और शायद यही देख करके तुमको मान हो गया, मैंने स्वप्न देखा जे मैं अभी कहीं समुद्र के किनारे एक अलग राजधानी बनाया, उसमें 16,000 महिषियों के साथ 16,100 महिषियों के साथ में शादी की और उनके नाती पोते इत्यादि हुए हमारे और सबके साथ में वहाँ रह रहा, शायद तुमने यही स्वप्न देखा, तुम ये जान गई इसलिए, अरे वो सपने की बात है, ऐसे कहते मुस्कुराते हुए इस ढंग से उनसे बातचीत किया, उनका लिंगन किया कि जिसको देख करके सत्यभामा एकदम उठ करके दौड़ी, पद्मा भी दौड़ी, देवकी के स्तन से दूध झरना बाशल रस पढ़ा, जामवंती इत्यादि सब मूर्छित हो गई उस भाव को देख करके, अभी कभी तक देखा नहीं था कृष्ण का ऐसा रूप और कैसा प्रेम इन लोगों के साथ में ये दिखला है। इसके बाद में बलदेव जी उनके साथ में है, इसके बाद में गोचारण करने के लिए जब समुद्र के किनारे है, जमुना किनारे, अरे ये जमुना है कहाँ, अरे ये तो समुद्र है, ये गोवर्धन पर्वत नहीं, ये तो रविवर्तक पर्वत है, हम कहाँ चले आए, इधर उधर देखने लगे तो बलदेव जी हंसने लगे, कहे भैया ये वृंदावन नहीं है, उन्होंने कहा ये समुद्र है, ये द्वारकापुरी है, आप ब्रज के भाव से मूर्छित हो गए थे, आपको जब जगाने के लिए ऐसी सब व्यवस्था की गई है, अभी आक्रमण करने वाला है कौन, कालजोन ना कि कौन, हाँ कोई आक्रमण करने वाला है, सब इन लोगों को मार करके खत्म कर देगा, अभी से जल्दी से व्यवस्था करनी है। उनको वीर रस में लेकर के भावांतर में लाया। कृष्ण हंसने लगे, अरे ये तो हमारा ये ब्रज का भाव। अंत में उन लोगों को फिर से गरुड़ पर चढ़ा करके फिर अपने राज्यसभा वहां पर आए, सभी लोग लौटे, सभी लोग आए किंतु सत्यभामा नहीं आई, कुछ मान था जी, गोपियों को इतना आदर करते हैं और इस भाव से ब्रज में रहते हैं, हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं। तो कृष्ण ने उसे डपट करके कहा, सत्राजित की कन्या मूर्खराज, मूर्खराज
हमारे ऊपर आरोप लगाया
ऐसे, इस तरह से तुम ही मूर्खा, ब्रजवासियों की प्रीति के लिए ही मैंने तुमको और इन सब रानियों को अंगीकार किया, क्यों थोड़ी सी रूप में क्षमता के कारण उनका हमको स्फूर्ति आए, उनकी याद स्मरण बनी रहे, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए ऐसा किया, अन्यथा तुमको एक सेकंड में हम बार कर देते, विसर्जित कर देते, दूर कर देते, यदि वो चाहें कि हम अभी चले जाएं वृंदावन तभी चले जाऊं, किंतु वो नहीं चाहती हैं, वो चाहती कि जहां पर सुखी है वहीं पर रहें, इसलिए मैं विशेष कारण से यहां पर नहीं जा रहा हूं। जब वो नहीं आई तो उनको उनकी दासियों से बुलवाया, कहा जाकर के कह दो अभी उनका प्रत्याग करते हैं, हमारी राजसभा भवन से निकल करके वो चली जाए, उसे निकाल दो यहाँ से। तब वो अपना वेश परिवर्तन करके साथ ही साथ में आई और गोपियों की महत्ता कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया। इस प्रकार से वर्णन के द्वारा नारद जी से वो कहा ये आपके वजह से ये सब भाव हमारे देखे गए, इसलिए तुम वर मांगो। तो उन्होंने वर मांगा कि मैं यही वर मांगता हूं जो ऐसी सब गोपियों की लीलाओं का श्रवण करे, जहां पर आपकी लीलाएं हुई हैं ऐसी सब, उस स्थान में यदि कोई जाए, ऐसे रसिक वैष्णव का कोई संग करे, तो उनके अंदर भी ऐसी भावनाएं जाग उठे, ऐसे कृष्ण के प्रति गोपियों का भाव उनके हृदय में जगता है। इस प्रकार से नारद जी ने प्रथम खंड की कर करके फिर वहां पर गए और वहां पर ऋषि लोग उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, उन सबको जाकर के बतलाया जे सब मस्त भक्तों में सेवकों में ये गोपियां ही सबसे श्रेष्ठ है, पहला खंड हुआ। अब दूसरा खंड की कथा हम दूसरे दिन कहेंगे, आज यही तक। अंग श्यामलिंग छटाभिरभितो मन्दिततेन्दीवरं जटं जगुदुरुचिसं विदततं पट्टम्बरस्य श्रिय बृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन्दां भक्त्या विहीना पराधनक्षयी चित्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणाय गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदे तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वयाधीन इति विज्ञाय राधे तं मे मां। द्वितीय खंड का कथा सार। द्वितीय खंड में जन्मेजय जी जैमिनी ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं। वो जैमिनी की बहुत प्रशंसा करते हुए कहने लगे, ये श्रीमद्भागवत को भी मंथन कर, जैसे समुद्र से अमृत निकला है, वैसे श्रीमद्भागवत ग्रंथ को भी आपने मंथन करके इस अमृत को आपने जो पान कराया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई। अब इसी के संबंधित और कोई कथा हम उसको बतलाएं। इधर जन्मेजय जी कहने लगे, जो परीक्षित महाराज जी अपनी मैया को कथा सुना रहे तो उसमें से आधा सुनाया, आधा बाकी रह गया, तो उसको पूरा करने के लिए उत्तरा जी बोली, जैसे मैं इस कथा को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, समझा भी मैंने, किंतु मैं कुछ बातों को नहीं समझ सकी, मुझे कुछ संदेह रह गया, तो तुम मुझको वो समझा। तो उन्होंने कहा, ये क्या तुम्हारा संदेह है? उन्होंने कहा, जो व्यक्ति साधक सकाम पुण्यों को करता है तो उसको भूर भुवा स्वः तीन लोकों की प्राप्ति होती है। भूर भुवा स्वः, इस लोक में पुण्य काम करता है और साधारण रूप में पुण्य, तो इसी लोक में ही जन्म लाभ करके और उसके पुण्यों का फल भोग करता है इसी लोक में। धन धान्य से पूर्ण होकर के, पुत्र परिवार के साथ में पूर्ण होकर के, मान के और सम्मान के साथ में वो जीवन लाभ, जो दूसरों के लिए दुख है, और उससे भी अधिक जो पुण्य करते हैं उनको भुआ लोग, जैसे ध्रुव इत्यादि।